हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 98। अरे नहीं, मैं नहीं मिली और ना मुझे याद नहीं, लेकिन गीता दी बोल रही थी कि कल जब आप नीचे मेरे रूम में रेस्ट कर रही थीं तब वो आपसे मिलने आया था। सुनैना की बात सुनकर स्वीटी ने उससे ये बात बताते हुए कहा, हाँ कल अरुण आया था मुझसे मिलने, लेकिन क्या भूल गया जो तुम ऐसे बोल रही हो। सुनैना ने थोड़ा सा सोचते हुए स्वीटी से पूछा, अरे भाभी अपना जैकेट भूल गया था वो मेरे रूम में, और कल रात को ही मैंने देखा और गीता दीदी से पूछा तब उन्होंने बताया कि उसका ही होगा क्योंकि आदित्य भैया के साइज का तो था नहीं। स्वीटी ने उसे पूरी बात बताई। ये सुनकर सुनैना हंसते हुए बोली, ओ अच्छा, इसलिए बोला तुमने वो बात, कोई नहीं भूल गया होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है मैं उसे कॉल करके बोल दूंगी, आकर ले लेगा। और इसी तरह बातें करती हुई सुनैना और स्वीटी दोनों नीचे हॉल में आ गईं और वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगीं। वहां डाइनिंग टेबल के पास की एक चेयर पर आदित्य पहले से बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे वहां पर देखकर स्वीटी एकदम चुप हो गई। सुनैना भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप आकर एक चेयर पर बैठ गई। आदित्य को वहां पर पहले से ही बैठा हुआ देखकर स्वीटी वहां से जाने लगी। सुनैना समझ गई कि स्वीटी आदित्य की वजह से ही वहां से जा रही है। सुनैना मन ही मन सोचने लगी कि उसे रुकने के लिए बोले या नहीं, लेकिन तब तक उसे रोकते हुए आदित्य ही बोल पड़ा, क्षितिजा कहाँ जा रही हो, ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? नहीं भैया, आप लोग कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी ब्रेकफास्ट। स्वीटी को भी आदित्य के इस तरह उसे रोकने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोली। सुनैना को भी नहीं लगा था कि आदित्य ऐसा कुछ कहेगा, तो वो भी हैरानी से मुंह खोले आदित्य की तरफ ही देख रही थी। अरे क्यों बाद में, हमारे साथ ही कर लो ना, आज थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी, मुझसे तो कोई बात भी नहीं हुई जब से तुम आई हो। आदित्य ने अपने ग्लास से ऑरेंज जूस का एक घूंट लेते हुए स्वीटी की तरफ ही नज़र उठाकर देखते हुए कहा। आदित्य के रोकने पर स्वीटी रुक गई और सुनैना के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ गई। उसके बाद आदित्य ने उससे उसके कॉलेज और उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पूछा, तो वो भी जवाब में बस थोड़ा बहुत उसे बता देती और जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत नाश्ता करके वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इतना डरते क्यों हैं सब तुमसे? स्वीटी के वहां से जाते ही सुनैना ने आदित्य की तरफ देखकर उससे सवाल किया। आदित्य भी अब तक अपना नाश्ता खत्म कर चुका था, टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछकर प्लेट पर टिश्यू पेपर रखते हुए सुनैना की तरफ देखकर एकदम संजीदा लहजे में आदित्य बोला, इस लाइफ में जीने के बस दो ही तरीके हैं, या तो किसी से डर कर रहो या तो सबको डरा कर रहो, और चॉइस तुम्हारी है। अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं डरती तुमसे। नैना आदित्य की ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में बोली, वो तो बस इसलिए क्योंकि तुम अभी तक असली आदित्य सिंघानिया से मिली ही कहाँ हो। अपने चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए आदित्य सुनैना की तरफ देखकर पिछली बार से भी ज्यादा सीरियस होता हुआ बोला। सुनैना अपने मन में सोचने लगी कि सच ही तो कह रहा है ये, कौन सा मैं इसे जानती हूँ अभी पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या, ये तो कुछ भी नहीं बताता अपने बारे में। और ये सब सोचते हुए सुनैना थोड़ा सा सहम गई आदित्य को इस तरह से देखकर, और बड़ी मुश्किल से अपने गले में फंसा हुआ थूक निकला। तो सुनैना को इस तरह देखकर आदित्य हंसते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हें डराने के बारे में कभी नहीं सोचा मैंने, और चलो अभी डॉक्टर के यहाँ चलना है। तो आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना की जान में थोड़ी जान आई और वो भी अपनी जगह से उठकर खड़ी होते हुई बोली, हाँ ठीक है चलते हैं। आदित्य आगे आकर सुनैना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और फिर वे दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकल आए। कार पास खड़े ड्राइवर से कुछ बात करके आदित्य उसे मना कर दिया और फिर आदित्य खुद ही कार ड्राइव करने लगा, सुनैना को अपने साथ वाली सीट पर बिठाकर। सुनैना ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। आदित्य भी हॉस्पिटल की तरफ ही ड्राइव करने लगा क्योंकि पहले तो दोनों को हॉस्पिटल ही जाना था और उसके बाद कहीं और। प्रथम अध्याय। नैना लिफ्ट से बाहर निकलकर कॉरिडोर में दोनों तरफ देखती हुई वहां पर ही खड़ी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है वो तुरंत ही बरस पड़ती है। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? वेलकम वेलकम, आइए, स्वागत है आपका। वैसे बहुत इंतजार करवाया आपने। दूसरी तरफ से एक कुटिलता भरी हंसी के साथ ये आवाज आती है। उसे पीछे से आकर कोई चेहरे पर काला कपड़ा डाल देता है और इससे पहले कि वो कपड़ा हटा पाती, कोई पीछे से उसके दोनों हाथ भी कसकर पकड़ लेता है। कौन का कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो? नैना जब तक की समझ पाती तब तक की ये सब कुछ उसके साथ हो चुका था। वो घबराते हुए बस इतना ही बोल पाती है, चुपचाप हमारे साथ चलो। डर की वजह से नैना के हाथ ने पकड़ा हुआ मोबाइल फोन उसके हाथों से छूटकर वहीं गिर जाता है और उसे अपना मोबाइल फोन उठाने का भी कोई मौका नहीं मिल पाता। लेकिन नैना जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। पीछे चल रहा आदमी अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन तब तक नैना 3-4 बार हेल्प हेल्प चिल्ला चुकी होती है क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था। मुंह बंद करके चुपचाप चलने को कहा था, इस तरह चिल्लाने के लिए नहीं। नैना को फिर से किसी आदमी की एकदम गुस्से में सख्त आवाज़ सुनाई देती है और किसी ने उसके मुँह पर भी हाथ रखा हुआ था तो वो कुछ भी बोल या चिल्ला नहीं पाती। और कुछ देर बाद उसके साथ चल रहे लोग उसे अपने साथ लगभग धक्का देते हुए लेकर कहीं जाते हैं और फिर उसे अंदर की तरफ धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। नैना अपने हाथ छूटते ही अपने चेहरे पर पड़ा कपड़ा हटाती है और अपने आसपास देखते हुए पाती है कि वह इस वक्त काफ़ी बड़े से कमरे में है और उस कमरे की लाइट बहुत कम है, एकदम हल्की रोशनी है उस कमरे में। तो नैना अपने चारों तरफ देखते हुए वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगती है और उसे दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देखकर वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है और उस दरवाजे को अंदर से खुलने की भी भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। तो नैना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और उसके साथ है क्यों, क्या है ये सब और कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो? चारों तरफ उस होटल रूम की दीवारों को देखकर चिल्लाती हुई नैना दरवाजे के पास ही निढाल सी जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके साथ अब उसका मोबाइल फोन भी नहीं होता जिससे कि वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला पाए और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता उस दरवाजे के अलावा। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं डार्लिंग, तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो ऐसा करके खुद को तकलीफ मत दो क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर से वही कुटिल वाली हंसी हंसती हुई आवाज़ कमरे में गूंजती है और वो हंसी सुनकर नैना के चेहरे पर भी अब डर की जगह कठोर भाव आ जाते हैं और वो गुस्से से भर जाती है। क्रमशः